समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं। दिल्ली में बसंती बयार और ट्यूलिप्स के खिलने के मौसम में 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम हाजिर हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा लेकर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपको बताएंगे, राज्यों की परिक्रमा के लिए चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुदिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुदिता। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, data in India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तथा अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं।
Prime Minister states India's Act East policy and Thailand's Act West policy complement each other, addresses Samvad program through video conferencing.
भारत का थोक मूल्य सूचकांक जनवरी 2025 में घटकर 2.31% रह गया है।
नेशन रिमेंबर्स ब्रेवहार्ट्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द पुलवामा अटैक।
और उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about need for ethical AI. Well, Prime Minister Narendra Modi, while addressing the recently concluded AI Action Summit in Paris, delivered a thought-provoking address on the transformative potential of artificial intelligence, while also raising concerns about its risks and biases.
Upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand, because that is what the training data is dominated by. It shows that while the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. That is why I am grateful to my friend.
PM Modi emphasized the urgent need for careful and collaborative global governance in this rapidly advancing field of AI. In his remarks, PM Modi highlighted how AI is reshaping key areas like economy, security and society, and warned that despite its tremendous potential, its development must be managed in a way that ensures inclusivity, transparency and ethical integrity.
और अभिषेक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसकी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है और शायद इसीलिए किसी अन्य क्षेत्र में नैतिकता का कंपास इतना प्रासंगिक नहीं है जितना ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में है। एआई हमारे काम करने, बातचीत करने और जीने के तरीके को नया आकार दे रहा है और 6 शताब्दी पहले प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद दुनिया जिस तरह बदली थी, उसी तरह और उसी गति से दुनिया बदलने वाली है जो पहले कभी नहीं देखी गई। एआई तकनीक के कई क्षेत्रों में बड़े लाभ हैं। हम आजकल देख ही रहे हैं अभिषेक कि आपको कुछ भी करना है, ChatGPT आपके पास है, ऐसी कई तकनीकें आपके पास है और तो और अब आपके रेटिना स्कैन से आप कई बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन नैतिकता की रेलिंग के बिना ये वास्तविक दुनिया में पूर्वाग्रहों और भेदभाव को बढ़ाने और मौलिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को खतरे में डालने का जोखिम भी पैदा करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने तेजी से में वृद्धि ने विश्व स्तर पर कई अवसर पैदा किए हैं। स्वास्थ्य देखभाल और निदान की सुविधा से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से मानव कनेक्शन को सक्षम करने और स्वचालित कार्यों के माध्यम से श्रम दक्षता बनाने तक।
Yes, absolutely, Mudita. And as Prime Minister Modi pointed out, that AI is already reshaping our polity, economy, security, and even a society. AI is the code for humanity in this century, but it is very different from other technological milestones in human history. It is developing at an unprecedented scale and speed, and been adopted and deployed faster than ever before. And since it is developing at an unprecedented scale and speed, it has been adapted and deployed even faster. There's also a deep interdependence across borders. Therefore, there's a need for collective global efforts to establish governance and standards that upload our shared values, address risk and build trust. But governance is not just about managing rifts and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good.
जी बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, और इसे देखते हुए हमें ओपन सोर्स सिस्टम विकसित करना चाहिए जो विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाए। हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त गुणवत्तापूर्ण डेटा केंद्र बनाने होंगे, प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना होगा और जन केंद्रित एप्लीकेशन बनाने होंगे। साथ ही साइबर सुरक्षा, दुष्प्रचार और डीप फेक से संबंधित चिंताओं का समाधान भी करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी प्रभावी और उपयोगी होने के साथ ही स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से भी सामंजस्य बिठा सके। हालांकि ये तेजी से हो रहे परिवर्तन गहरी नैतिक चिंताएं भी पैदा करते हैं। नौकरियों का नुकसान एआई का सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रौद्योगिकी के कारण काम खत्म नहीं होता, केवल इसकी प्रकृति बदल जाती है। अभिषेक, कुछ साल पहले अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर्स जब तेजी से बढ़ रहे थे, डेवलपमेंट चल रहा था उनमें, तो यही हो रहा था कि उसके कारण नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट उसके कारण ही जनरेट हुआ है।
एब्सोल्युटली, एंड द फ्यूचर विल बिलोंग टू दोज हु कैन leverage the power of AI. That's what I think, you know. Well, anyway, moving on, addressing ethical issues requires multidisciplinary approach involving technologists, ethicists, policymakers, and society at large. And it involves developing ethical guidelines, regulations, and best practices to ensure that AI technologies are developed and deployed in ways that benefit humanity while minimizing harm and ensuring fairness and accountability.
और अब समय है राज्यों की परिक्रमा का, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास।
Yes, and the textiles minister Giriraj Singh today inaugurated the world's largest textile event, Bharat Tex 2025, at Bharat Mandapam in New Delhi. And talking to the media, the textiles minister said that as many as 6,000 foreign buyers are participating in Bharat Tex, making it the world's biggest textile fair. The minister also informed that Prime Minister Narendra Modi will address domestic and international textile industry buyers at Bharat Tex this Sunday. We have more from a correspondent.
The much-awaited Bharat Tex 2025, world's largest textile event, commenced today at Bharat Mandapam in New Delhi. Over 5,000 exhibitors and 6,000 international visitors are taking part in the four-day event. The event features exhibitions, knowledge sessions, thematic discussions, G2G meetings, B2B networks, MOUs, product launches and interactive pavilions. Inaugurating the event, Textile Minister Giriraj Singh said, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, Bharat Tex 2025 has become the largest textile expo in the world.
देखिए, पूरी दुनिया में हम सस्टेनेबिलिटी पर सबसे आगे हैं। रिसाइकिल में सेग्रीगेशन का काम भारत से ज्यादा कोई कर नहीं सकता, तो हम कॉटन रिसाइकिल में, अपसाइकिल में भारत सबसे आगे है और दुनिया इसे स्वीकार रहा है।
Bharat Tex 2025 aims to propel India's textile industry to new heights, showcasing its excellence, fostering international collaborations and stimulating economic growth. Priya Mondal for Parikrama.
और अगली खबर है थिएटर की दुनिया से। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन देश विदेश में किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन कोलंबो और काठमांडू सहित देश के 13 शहरों में किया जा रहा है। 28 जनवरी से शुरू हुआ ये रंगारंग महोत्सव इस महीने की 16 तारीख तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महोत्सव में 200 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां, चर्चाएं, मास्टर क्लास और अन्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं अमन की रिपोर्ट।
आज इस महोत्सव में विजय केंकरे द्वारा निर्देशित कृष्णा विला, नवदीप कौर द्वारा निर्देशित सोहनी महिवाल और नीलम मान सिंह चौधरी द्वारा निर्देशित तमाशा जैसे कई नाटकों का मंचन राजधानी में होगा। वहीं समानांतर आयोजनों की एक श्रृंखला होगी जिसमें कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक, लोक संगीत, ओपन माइक आदि शामिल होंगे। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय पर आधारित इस महोत्सव में रूस, इटली और स्पेन सहित 9 देशों की 200 से अधिक प्रस्तुतियां दिखाई जा रही हैं। वहीं जापान, जर्मनी और श्रीलंका जैसे देशों के जाने माने थिएटर कलाकार और निर्देशक ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया है। महोत्सव में रंग हाट भी है जो थिएटर कलाकारों, प्रोग्रामरों, संरक्षकों और समर्थकों को एकजुट कर रहा है। इसमें रंगमंच को लेकर चल रही अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है और साथ ही निर्देशकों व रंगकर्मियों को एक मंच प्रदान कर रहा है। परिक्रमा के लिए अमन यादव।
त्रिपुरा द लैंड ऑफ हिल्स पिक्चरस ब्यूटी हैज 73% एरिया दैट इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट्स एंड सच ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीन कवर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बन सिंकिंग लीडिंग टू मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। However, according to State Science and Technology and Forest Minister Animesh Deb Barma, apart from the trees, the number of bamboo produced in the state is an important contributor when it comes to absorbing the carbon dioxide and releasing oxygen in the atmosphere. Agartala correspondent has more in this report.
Speaking at a workshop on role of bamboo in climate change mitigation at Agartala, State Science and Technology and Forest Minister Animesh Deb Barma said that bamboo can absorb 35% more carbon dioxide than the trees. He said bamboo can release 30% more oxygen as compared to trees. Underscoring the need to go for mass bamboo plantation in the state, he said the bamboo mission in Tripura and in the country is going to be very significant. In order to increase bamboo plantation, he urged the Northeastern Council to allocate more fund to Tripura government. He also said that Tripura has the most suitable soil structure in the country where bamboo can be grown in large number. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani News, Agartala.
Puducherry will soon be immersed in a celebration of art, music, dance and cuisine as it welcomes the Indo-French Festival 2025. This vibrant event will bring together acclaimed artists from India and France, creating a unique cultural exchange. The three-day event will be inaugurated today by Puducherry Lieutenant Governor K. Kailashnathan in the presence of distinguished dignitaries including Chief Minister N. Rangasamy, Speaker R. Selvam, Tourism Minister K. Lakshmi Narayanan and French Consul General Attorney Roland Piguet, with mesmerizing performances larger than life, street puppets and the flavors of authentic French cuisine. This festival promises to be a one-of-a-kind experience for art lovers and cultural enthusiasts. We have more from a correspondent.
The inaugural evening will begin with an iconic Guignol parade and a lantern launching takeoff, symbolizing the cultural fusion of two nations. Traditional Bharatanatyam performances will set the stage, followed by a spectacular waterfall performance by French choreographer Ali Salmi and a soulful concert, Le Chant du Monde by Lily Yang. As the festival unfolds, Puducherry streets and parks will transform into open-air theatres. On day two, audiences at Beach Road will be awed by the street giants puppets by Frederick Simon, while Bharati Park will host the immersive performance, Rotation, a Wandering by Ali Salmi. As the night falls, the vibrant Synchronicity concert by Jewelry, featuring stunning background projections, will create a magical experience at Gandhi Tidal. On the final day, the giant street puppets will return to Beach Road, while Lily Yang's amazing tree songs and bird story puppets for children by Frederick Simon will captivate audiences at Gandhi Tidal. The festival will conclude with an artist party jam session featuring all participating performers. Food lovers can indulge in an exclusive taste of French food session curated by renowned gastronomy expert Lucien Rennie at the Pondy Mice Pavilion. With an exciting lineup of performances, interactive art experiences, and a showcase of Indo-French camaraderie, Puducherry's Indo-French Festival 2025 is said to be an unmissable cultural spectacle. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
और शुद्ध जब भी हम सेब की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों की हसीन वादियां और बड़े बड़े सेब के बागान आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक किसान ने वहां के गर्म मौसम में भी सेब के बागान तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे मुंबई संवाददाता के पास।
पारंपरिक रूप से धान के उत्पादन के लिए जाने जाने वाला भंडारा जिले का सिरसोली गांव अब सेब के बागान तैयार करने में एक अनूठी पहल कर रहा है। गांव के किसान बाबू कस्तूरे ने इस पहल की शुरुआत की है। उनके पास 20 एकड़ जमीन है और वो पहले धान की खेती करते थे, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें बागायती फसलों की ओर रुख करना पड़ा। चाय पीते पीते बागायती फसलों पर शुरू हुई ये चर्चा आखिरकार सेब पर जाकर समाप्त हुई। आइए सुनते हैं ये कहानी खुद बाबू कस्तूरे से।
चर्चा में लोगों का कहना निकला कि बाबू तेरे पास बहुत खेती है तो तू बागवानी कर, यानी आम जाम इनके पौधे लगा। तो उस समय वो एक बोला कि मैं सफरजन यानी एप्पल की खेती लगाऊंगा। कुछ दिन के बाद में इंटरनेट में सर्च करना शुरू किया तो उसमें पता लगा कि हिमाचल प्रदेश में हरिमन शर्मा जी जो है उन्होंने HR MN 99 वेराइटी एप्पल की उष्ण हवामान के लिए निर्मित की है। तो मैं 2021 में हिमाचल प्रदेश गया, वहाँ से 400 पौधे लेकर आया और एप्पल के पौधे लगाए।
इनमें से कुछ पौधे जंगली सुअरों ने नष्ट कर दिए थे, फिर भी आज उनके पास सेब की HR MN 99 प्रजाति के 175 पेड़ बाकी है और उनमें फूल भी उगाए हैं। कुछ पेड़ों पर सेब भी दिखने लगे हैं। भंडारा के किसान बाबू कस्तूरे की इस साहसी पहल की वजह से अब सेब के साथ सिर्फ कश्मीर की सर्दी ही नहीं भंडारा की धूप भी जुड़ने जा रही है। भंडारा से प्रवीण तांडेकर के साथ परिक्रमा के लिए मुंबई से अंकिता आपटे।
The Jammu and Kashmir artists associated with music and related genre are working on partnerships with Islamic Republic of Iran for opportunities to perform on the international platform through cultural collaboration between India and Iran. In this connection, celebrated artist, cultural activist and chairman of the Kashmir Music Club Srinagar, Wahid Jilani, met Cultural Council of Iran to India, Dr. Farid Asr, recently in New Delhi. The discussion centered around enhancing Indo-Iran cultural cooperation with particular emphasis on the shared heritage of Sufi music and the preservation of cultural traditions. This meeting marks an important step in strengthening cultural ties and promoting peace and harmony through art and music on an international level. We have a report by our correspondent Tariq Rathar.
Dr. Farid Asra and Wahid Jilani discussed exploring opportunities to deepen artistic exchanges and strong interest in fostering collaborative efforts aimed at celebrating the cultural synergy between the two countries. Wahid Jilani has decades-long contribution in preserving and promoting the artistic and cultural heritage of Kashmir on a global platform. He composes music and sings in Urdu, Kashmiri, Persian and Arabic. Talking to Parikrama, Wahid Jilani gave update about the initiative.
जो हम आहंगी है ईरानियन कल्चर और कश्मीरी कल्चर में, हम इसको प्रमोट करें और लोगों को अवेयर करें कि यही रबाब कश्मीर में भी बजता है, यही रबाब ईरान में भी बजता है, यही संतूर ईरान का है, यही संतूर कश्मीर में भी यूज होता है, बजाने में क्या फर्क है लेकिन सुर ताल एक ही है। डिस्कशन हुआ कि हम ईरानियन कल्चर को कैसे प्रमोट करें हिंदुस्तान में और खासकर कश्मीर में, और फिर कश्मीरी कल्चर को हम ईरान में कैसे प्रमोट करें। राइट नाउ हम कुछ प्रपोजल्स पे काम कर रहे हैं। ईरान से कौन कौन से लोग हमारे कश्मीर में आएंगे, नई जनरेशन को बताना है ये साज कहाँ से आए हैं, बजाने वाले कौन लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, ईरान के कौन आर्टिस्ट थे, कश्मीर के कौन आर्टिस्ट थे। वर्कशॉप्स होंगे इस बारे में, कॉन्सर्ट्स होंगे।
Here's an extract from one of his songs in Urdu and Kashmiri. It's hoped that the latest initiative will help in creating meaningful partnerships that will link the cultural and artistic legacies of Iran and Jammu Kashmir, the crown of the country. For Parikrama, Tariq Rathar, Akashwani News, Srinagar.
Recently, Goa witnessed the annual one-day event, No More Zoo. For details of the events, let's go over to our Panaji correspondent.
No More Zoo means non-motorable zone. It is an annual one-day event held in Porvorim part of Goa. The sixth edition of No More Zoo was inaugurated by Bollywood star John Abraham on Sunday 9 February by releasing balloons in the air in the presence of Tourism Minister and Porvorim MLA Rohan Khaunte, Art and Culture Minister Govind Gawde, Deputy Speaker Joshua D'Souza, Mandrem MLA Jeet Harolkar, former MLA of Aldona Glenn Ticklow, and the Punch members of Pena de Franca, Sukur and Salvador de Mundo. There were in all 12 zones, including Heritage Zone, IT and Science Zone, Youth Zone, Fitness Zone, Martial Arts Zone, Kids Zone, Health Zone, art zone and dance zone. In addition, more than 100 stalls were set up offering variety of local cuisine, handmade products and eco-friendly goods. The area near the square of Shivaji Maharaj statue in Porvorim wore a festive look as thousands of people participated in this program. There were several stalls comprising of Goan food, jewelry, gift articles, etc. Various Indian and Western dance shows entertained the crowd. There were live demonstrations of sports like martial arts, Zumba, etc. While speaking on this occasion, actor John Abraham stated that Goa's cultural heritage is very rich and this unique program brings together all the sections of the society. Such types of programs should be organized every year, he added. Tourism Minister Rohan Khaunte stated that center has sanctioned rupees 100 crore for setting up town square at Service Road. He wanted to start the construction of this project soon so that next year no mazo can be held at town square.
A whole idea which started to get a better community outreach, and as Goa talks about communal harmony, we wanted something which gets everybody together, irrespective of the religion, caste, creed. And we needed everything, a platform, right from a toddler to the senior citizen, getting opportunities for himself to display his talent and also get a platform for him to get that confidence in life to move ahead.
For Parikrama, with inputs from Prashila Gadekar, this is Mahesh Sobre from Akashwani Panji.
In business news today, benchmark domestic equity indices today ended in negative territory amid broad-based sell-off, extending the downward trend to 8th straight session. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange, Sensex, fell 200 points to close at 75,939. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 shed 102 points to settle at 22,929. And now on to some sports news. The 38th National Games, which commenced on January 28th in Uttarakhand, will conclude with a grand closing ceremony today at the Golapar International Stadium in Haldwani. Union Home Minister Amit Shah will be the chief guest, accompanied by the Chief Minister of Meghalaya, the President of the Indian Olympic Association, P.T. Usha, and several other distinguished dignitaries. And with the conclusion of the 38th National Games, the hosting rights will officially be handed over to Meghalaya. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami will pass the National Games flag to the Chief Minister of Meghalaya, marking the transition. And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter Akamma Cherian, who was born on the 14th of February 1909 at Kanjirapalli, erstwhile Travancore, in Kerala. Though a teacher by profession, she quit her job to join India's freedom movement. Gandhiji gave her the title of the Jhansi Ki Rani of Travancore.
In August 1938, a public demonstration was called by the Travancore State Congress, which was suppressed by the Diwan of Travancore. People rose up in the civil disobedience movement and many nationalist leaders were imprisoned. Akamma Cherian, who was only 29 years old at the time, came forth during the trying times and emerged as a daring and charismatic leader.
She organized a massive rally to put pressure on the rulers to release the jailed leaders and to install a responsible government in Travancore. More than 20,000 people joined the protest, and people across the country hailed her for her unflinching courage.
Akamma organized the Desha Sevika Sangh, a female volunteer corps, and travelled tirelessly across the country to appeal to women to join the freedom struggle. Her efforts led to a surge in the number of women volunteers in the local bodies.
On the 24th of December 1939, she attended the annual conference of the Travancore State Congress, for which she was sentenced to 1 year of imprisonment. After release, she became the president of Travancore Congress, and in her presidential address, she welcomed the Quit India resolution passed at the Bombay session of the Indian National Congress in 1942. Akamma faced a series of arrests for violating ban orders and staging protests, but this did not deter her.
Post-independence, Akamma was elected to the Travancore Legislative Assembly in 1947. She quit active politics in 1967 and served as a member of the Freedom Fighters Pension Advisory Board. In her autobiography, she summed up her life when she wrote,
"Shakespeare has said that the world is a stage and that all the men and women merely players. But to me, this life is a long protest. Protest against conservatism, meaningless rituals, societal injustice, gender discrimination, against anything that is dishonest, unjust.
श्रोताओं, पुण्यतिथि और जयंती के क्रम में अगर मैं कहूं कि आज हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रही मुमताज जहां बेगम देहलवी की जयंती है तो आप कुछ समझे नहीं ना. चलिए एक क्लू देते हैं कि कई लोगों का मानना है कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी. कुछ तो समझ आ रहा होगा आपको. अगला क्लू है उन पे फिल्माया गया गाना जब प्यार किया तो डरना क्या. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबाला की, जिनका सफर फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर बेबी मुमताज के नाम से शुरू हुआ था. मुगले आजम, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, बरसात की रात जैसी कई कामयाब फिल्मों में हीरोइन की भूमिका उन्होंने निभाई. उनकी खूबसूरती और दिलकश अदाओं पर दुनिया फिदा थी. मुहमांगी फीस उन्हें मिलती थी, लेकिन कहते हैं ना कि मुकम्मल जहां नहीं मिलता. खूबसूरती, शोहरत सब होते हुए भी 50 के दशक में उन्हें दिल की बीमारी का पता चला और 23 फरवरी 1969 को केवल 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. तो आइए सुनते हैं उनका एक डायलॉग और उनका आइकॉनिक सॉन्ग.
क्या हुआ सुरैया, मुझे किससे मोहब्बत?
जी नहीं, तुमसे है.
हाय अल्लाह. कौन? चुप सुरैया, खुदा के लिए ऐसे ख्वाब ना दिखा जिनके देखने की एक कनीज कभी जुरत भी नहीं कर सकती. वो साहिब आलम है, हिंदुस्तान की होने वाली शहंशाह.
तो क्या हुआ आपा?
नादान, जमीन को आसमान से क्या निस्बत कनीज.
मगर साहिब आलम की.
फिर तूने उनका नाम लिया, कहीं किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा. जानती हूँ.
बदनामी से क्यों डरती हो?
अपनी बदनामी से नहीं डरती, उनकी रुसवाई नहीं चाहती.
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या.
Yes, and sir, P.G. Woodhouse passed away on this day in 1975. He was an English writer and one of the most widely read humorists of the 20th century. His creations include the feather-brained Bertie Wooster and his sagacious valet Jeeves, the immaculate loquacious P. Smith, Lord Emsworth, and the Blandings Castle set, the oldest member, with stories about golf and Mr. Molina, with tall tales on subjects ranging from bibulous bishops to megalomaniac movie moguls. Born in Guildford, the third son of a British magistrate based in Hong Kong, Woodhouse spent happy teenage years at the Dulwich College, to which he remained devoted all his life. After leaving school, he was employed by a bank, but disliked the work and turned to writing in his spare time. His early novels were mostly school stories, but he later switched to comic fiction. Most of Woodhouse's fiction is set in his native United Kingdom, although he spent much of his life in the US and used New York and Hollywood as setting for some of his novels and short stories. And he died in 1975 at the age of 93 in Southampton, New York, 1 month after he was awarded a knighthood of the Order of the British Empire. Woodhouse was a prolific writer throughout his life, publishing more than 90 books, 40 plays, 200 short stories and other writings between 1902 and 1974. He worked extensively on his books, sometimes having two or more in preparation simultaneously. He would take up 2 years to build a plot and write a scenario of about 30,000 words. After the scenario was complete, he would write the story. Early in his career, Woodhouse would produce a novel in about 3 months, but it slowed in old age to around 6 months. He used a mixture of Edwardian slang, quotations, from and allusions to numerous poets, and several literary techniques to produce a prose style that has been compared to comic poetry and musical comedy.
और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और भाषाविद विद्यानिवास मिश्र की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने ललित निबंध की विधा को नए आयाम दिए थे. हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के वे संपादक रहे और उसकी नई पहचान भी बनाई थी. देश विदेश की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते भी रहे. पद्मश्री और पद्मभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था. राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था और आकाशवाणी से भी वे जुड़े रहे थे. 2005 में आज ही के दिन एक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर.
नमस्कार.